नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 11 जून 2021 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, पिछले दो दशकों में पहली बार फिर गहरा रही है बाल मजदूरी की समस्या। बाल श्रमिकों की संख्या बढ़कर 16 करोड़ हुई। कोविड-19 महामारी के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों के कारण लाखों अन्य बच्चों पर मंडरा रहा है जोखिम। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद चुने गए यूएन महासभा के 76वें सत्र के लिए नए अध्यक्ष। सुरक्षा परिषद ने महासचिव के तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुटेरेश को नामित किया। म्यांमार में बड़े पैमाने पर खून खराबा और मानवीय संकट को गहराने से रोकने के लिए हिंसा पर विराम लगाने की पुकार। और कोविड-19 से पुनर्बहाली प्रयासों में प्रकृति के विरुद्ध युद्ध का अंत और महासागरों की रक्षा है जरूरी। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि दो दशकों में पहली बार बाल श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दुनिया भर में मजदूरी कर रहे बच्चों का आंकड़ा अब 16 करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले 4 वर्षों में इस संख्या में 84 लाख की वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा गुरुवार को जारी इस साझा रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि कोविड-19 महामारी के कारण लाखों अन्य बच्चों पर बाल मजदूरी का शिकार होने का जोखिम मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ अंशु शर्मा।
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि महामारी के परिणाम स्वरूप 2022 के अंत तक वैश्विक स्तर पर 90 लाख अतिरिक्त बच्चों को बाल श्रम में धकेले जाने का खतरा है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा,
We are losing ground in the fight to end child labor.
हम बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में बढ़त गंवाते जा रहे हैं और पिछला साल इस लड़ाई के लिए और भी कठिन रहा है। कोविड-19 से पहले भी हमने दो दशकों में पहली बार बढ़ोतरी होते देखा था। अब कोविड-19 के कारण अगले साल के अंत तक 90 लाख और बच्चों के बाल मजदूरी की ओर धकेले जाने का जोखिम है।
इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं। कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी करने वाले बच्चों का आंकड़ा 70% है, सेवा क्षेत्र में 20% और उद्योगों में 10% बच्चे हैं। 5 से 11 वर्ष के लगभग 28% बच्चे और 12 से 14 वर्ष की आयु के 35% बाल श्रमिक स्कूल से बाहर हैं। बाल श्रमिकों के तौर पर लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम 14% है, जो शहरी क्षेत्रों में 5% के आंकड़े से लगभग 3 गुना अधिक है।
और इसी रिपोर्ट पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली में हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के भारत कार्यालय में नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रंजीत प्रकाश से बात की और सबसे पहले रिपोर्ट के अहम निष्कर्षों के बारे में सवाल किया।
यह पता चलता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि दो दशकों में बाल श्रम उन्मूलन में जो सुधार आई थी अब वो धीमी पड़ गई है। और दो दशकों से मेरा मतलब है कि सन 2000 और 2016 के बीच में मजदूरों की संख्या में करीब 9.5 करोड़ की कमी आई थी और वो जो कमी आई है वो रुक सी गई है। जो बाल मजदूर हैं उनकी कुल संख्या करीब 16 करोड़ है, उसमें से 85 से 90 लाख बाल श्रमिक पिछले 4 वर्षों में जुड़े हैं। 2000-2016 के बीच तो सबसे अच्छी प्रगति देखी गई थी एशिया पैसिफिक में ही, जिसका कि दक्षिण एशिया हिस्सा है साउथ एशिया, लेकिन अब कोविड के हिसाब से दुनिया भर में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। स्वाभाविक है कि दक्षिण भारत में भी इसका प्रभाव होगा और संख्या बढ़ेगी।
तो क्या इसका कारण, इस बढ़ोतरी का कारण कोविड-19 ही है या कोई अन्य कारक भी है जो इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं?
सिर्फ कोविड-19 के चलते कितने बाल श्रमिक जुड़े या जुड़ सकते हैं इसका डेटा नहीं है इस रिपोर्ट में, लेकिन यह तय है कि बताया गया है कि जिस तरह की गरीबी बढ़ रही है उससे करीबन 90 लाख और मतलब 1 करोड़ के आसपास में 2022 तक, जो कि हार्डली 1 साल और बचा हुआ है, उसमें संख्या बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा कारण इसमें बताया गया है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी संरचना, जिसे हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ रूरल इकोनॉमी भी कहते हैं, तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य और पारिवारिक कार्य, ये दोनों जुड़ करके इस नंबर को बढ़ा रहे हैं और इसको अगर नहीं रोका गया तो बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि बाल श्रम की संख्या वहीं बढ़ रही है जहां कानून को ठीक तरह से लागू नहीं किया जा रहा, यह भी एक कारण है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहां पे इनफॉर्मल इकोनॉमी है, खास करके कृषि कार्य है उसमें, और जो सप्लाई चेन है, जो घर पे काम होते हैं छोटे छोटे काम, उसमें इन बच्चों को जोड़ा गया।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के भारत कार्यालय में नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रंजीत प्रकाश। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को यूएन महासभा के 76वें सत्र के लिए नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सोमवार को जनरल असेंबली के अगले प्रमुख के चुनाव के लिए मतदान के बाद वर्तमान अध्यक्ष वोल्कान बोस्किर ने नतीजे की घोषणा की।
नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेंड हिज एक्सीलेंसी अब्दुल्ला शाहिद फ्रॉम मालदीव्स 143 हिज एक्सीलेंसी जलमाय रसूल अफगानिस्तान 48।
अब्दुल्ला शाहिद को 143 वोट प्राप्त हुए, वहीं अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री जलमई रसूल को 48 मत मिले। महासभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने कहा है कि महासभा का 76वां सत्र एक चुनौतीपूर्ण दौर में आयोजित होगा।
डिजीज डिस्पेयर एंड डेवास्टेशन हैव कैरेक्टराइज्ड द पास्ट ईयर इनइक्वालिटी इनजस्टिस एंड इंस्टेबिलिटी हैव इंक्रीज्ड।
नव निर्वाचित अध्यक्ष कह रहे थे कि बीमारी निराशा और तबाही ने पिछले वर्ष को परिभाषित किया है। विषमता अन्याय और अस्थिरता बढ़ी है। पर्यावरण महासागर और हमारी पृथ्वी पीड़ा में है, पर हमें फिर से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की रक्षा करने के लिए समुदायों का पुनर्निर्माण करने, अर्थव्यवस्थाओं की पुनर्बहाली करने और भरोसे को बहाल करने की जरूरत है। सितंबर में शुरू होने वाले यूएन महासभा के अगले सत्र में अब्दुल्ला शाहिद मौजूदा अध्यक्ष वोल्कान बोस्किर का स्थान लेंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने महासचिव के तौर पर 5 वर्षीय दूसरे कार्यकाल के लिए यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश को औपचारिक रूप से नामित किया है। यूएन के शीर्षतम पद के लिए अगला कार्यकाल जनवरी 2022 में शुरू होना है। सुरक्षा परिषद ने एक निजी बैठक के दौरान पारित एक प्रस्ताव में सिफारिश पेश की है और अब इसे औपचारिक स्वीकृति के लिए यूएन महासभा में भेजा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की प्रमुख मिशेल बाशेलेट ने चेतावनी जारी की है कि म्यांमार में बड़े पैमाने पर खून खराबा रोकने और मानवीय संकट को गहराने से रोकने के लिए वहां तेज होती हिंसा पर विराम लगाना होगा। खबरों के अनुसार देश के काया और चिन्ह प्रांत में सैन्य जमावड़ा बढ़ रहा है। पिछले 3 हफ्तों में 1 लाख से अधिक लोगों ने घर से भागकर जंगलों में शरण ली है और उनके पास भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय की शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर क्षोभ जताया कि महज 4 महीनों में म्यांमार एक नाजुक लोकतंत्र से मानवाधिकारों के लिए त्रासदी बन गया है।
In addition to the loss of life, people are suffering from severe impacts on their social and economic rights. The military leadership is
यूएन मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शम दसानी कह रही थी कि बड़ी संख्या में लोगों की जाने गई हैं और उनके सामाजिक व आर्थिक अधिकारों पर गंभीर असर हुआ है। इस संकट के लिए म्यांमार का सैन्य नेतृत्व जिम्मेदार है और उसकी जवाबदेही तय की जानी होगी। म्यांमार में 1 फरवरी को देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटाए जाने और सैन्य नेतृत्व द्वारा सत्ता हथिया लिए जाने के बाद से अब तक 850 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 4000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि सरकारी सुरक्षा बलों ने हथियारबंद गुटों के अलावा आम नागरिकों के खिलाफ भारी हथियारों का इस्तेमाल करना जारी रखा है। मानवाधिकार प्रमुख ने क्षेत्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने का आह्वान किया है और ध्यान दिलाया है कि म्यांमार की सेना का ये दायित्व है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने चिंता जताई है कि बढ़ते प्रदूषण, तापमान और हद से ज्यादा मछलियां पकड़े जाने से महासागरों और जैव विविधता पर भारी असर हो रहा है। उन्होंने इस वर्ष विश्व महासागर दिवस पर अपने संदेश में आगाह किया कि कोविड-19 महामारी से पुनर्बहाली प्रयासों में प्रकृति के विरुद्ध युद्ध का अंत करना होगा और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए महासागरों की रक्षा करनी होगी। एक रिपोर्ट के साथ प्रतिष्ठा जैन।
विश्व महासागर दिवस हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। यह दैनिक जीवन, भोजन, आजीविका सहित अन्य जरूरतों को पूरा करने में महासागरों की भूमिका को रेखांकित करता है। 3 अरब से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए महासागर पर निर्भर हैं। इनमें से ज्यादातर विकासशील देशों में है। एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि महासागरों से मानवता को जो लाभ मिलते हैं वे मानवीय गतिविधियों से घटते जा रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन से महासागर का तापमान और अम्लीकरण बढ़ रहा है, जैव विविधता नष्ट हो रही है और समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इससे भारी आबादी वाले तटीय इलाकों को खतरा पैदा हो गया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश,
As we strive to recover from COVID-19, let's end our war on nature.
यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि कोविड-19 महामारी से उबरते समय प्रकृति के खिलाफ अपने युद्ध का भी अंत किया जाना होगा। यह टिकाऊ विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने, पेरिस समझौते के लक्ष्य हासिल करने और महासागरों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।